एपिसोड 25।
एक बात और बता, पैट्रिक ने कहा। एक नौजवान लड़की को मैं ख्वाबों में देखता रहता हूँ। किस हालत में शहंशाह? इस हालत में कि वो मेरे सामने आन खड़ी होती है। उसका सर नहीं होता, कंधों तक सिर धड़ होता है। फिर पलक झपकते उसके कंधों पर सर नजर आने लगता है, गर्दन, चेहरा और सर। वो मुझे देखती रहती है, टिकटिकी बांध कर मुझ पर खौफ तारी हो जाता है। चंद लम्हों बाद लड़की की आवाज सुनाई देती है, तेरी बादशाही पर भी घोड़े दौड़ेंगे, तेरा नाम और निशान नहीं मिलेगा। लड़की के होंठ नहीं हिलते मगर आवाज सुनाई देती है। क्या शहंशाह उस लड़की को पहचानते हैं? बूढ़े ने कहा, क्या ऐसी कोई लड़की शहंशाह की जिंदगी में कभी आई है?
हाँ
हाँ, राड्रिक ने जवाब दिया। वो पंपोलोना में मेरी जिंदगी में आई थी। वो बागियों के सरदार की बेटी थी, कमसिन थी। मैंने उसे पास रखा और एक रात उसकी एक गुस्ताखी पर तलवार के एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। राड्रिक बागियों के लीडर की बेटी इस्तोरिया की बात कर रहा था। बूढ़े काहिन के पूछने पर राड्रिक ने उसे पूरा वाक्या सुना दिया। क्या ये कोई बुरा शगुन है? राड्रिक ने पूछा और कहा, मेरा ये एतराफ भी सुन लो कि मैं जो किसी से नहीं डरता, इस लड़की को ख्वाब में देखकर डर जाता हूँ। शगुन अच्छा नहीं शहंशाह, बूढ़े ने कहा। कमसिन की बद्दुआ जल्दी कबूल होती है। वो कि जिसने सबको पैदा किया है, हर किसी के साथ इंसाफ करता है। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में ताकत है जो बुरे शगुन का असर जायल कर सकती है, राड्रिक ने कहा। यह इस जादू की ताकत है जिसके कालिक यहूदी हैं, और तुम यहूदियों के मुरब्बी ही नहीं काहिन भी हो। मैंने तुम्हें महल में जो अजमत दे रखी है उसके काबिल मैं किसी यहूदी को नहीं समझता। तुम वाहिद यहूदी हो जिस पर मैंने इतना कर्म किया है। क्या ये गुलाम उस कर्म के काबिल नहीं? बूढ़े ने पूछा, क्या इतनी अजमत उसका हक नहीं?
है
जरूर है, राड्रिक ने कहा। मैं तुम्हें इससे भी बड़ा सिला दूंगा। एक काम फौरन कर दे, मुझ पर कोई ऐसा अमल कर दे कि ये लड़की मेरे काबू में आना छोड़ दे और मेरे दिल से इसका खौफ निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने मुल्क पर हमला करने वालों के सामने जाऊं तो मेरे दिल पर खौफ तारी हो जाए। ये वाकया एक पुर्तगेजी तारीख दान डीलो मेगो ने अपनी किताब अंदलुसिया की कुछ हिकायात में कलम बंद किया है। उसने राड्रिक के फौरन बाद के वक्त की तहरीरों के हवाले भी दिए हैं। डीलो मेगा लिखता है कि राड्रिक बेखौफ बादशाह और मैदान जंग का निडर जंगजू था, लेकिन इस कमसिन लड़की के कत्ल के बाद इस पर खौफ सा तारी रहने लगा था। ये बूढ़ा काहिन मजहबी पेशवा भी था और वो जादू और सहर का खास तौर पर माहिर था। आने वाले वक्त की भी खबरें सुना दिया करता था। राड्रिक ने उसे अपने महल में रख लिया था। राड्रिक ने उसे कहा कि वो उसे उस लड़की के खौफ से नजात दिला दे और फिर अपनी सहरकारी से उस बुरे शगुन को अच्छा बना दे। यहूदी काहिन ने राड्रिक के सर से ताज उतारकर उसकी गोद में रख दिया और उसका सर अपने दोनों हाथों में लेकर उसका चेहरा जरा ऊपर किया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसके साथ ही अपने दोनों अंगूठे उसके माथे पर रगड़ने लगा। उसने ये अमल चंद लम्हे किया और राड्रिक के सर से अपने हाथ उठा लिए। राड्रिक ने अपने सर को दाएं बाएं हिलाया। मैंने कुछ महसूस किया था, राड्रिक ने कहा। मैं जानता हूं, बूढ़े यहूदी ने कहा। अब ये लड़की शहंशाह के ख्वाबों में नहीं आएगी, ख्यालों में भी नहीं आएगी। शहंशाह इसके खौफ से आजाद हो गए हैं। और बाकी काम? राड्रिक ने कहा, तुमने कहा था कि यह शगुन अच्छा नहीं, इसका क्या इलाज करोगे? क्या शहंशाह अपने गुलाम को एक नौकेज लड़की दे सकते हैं?
एक नहीं, 100 कहो, राड्रिक ने कहा। उम्र कितनी हो?
21 साल से कम, बूढ़े ने जवाब दिया। ये लड़की मुझे अपने लिए नहीं, ये लड़की जिंदा नहीं रखी जाएगी। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उसका दिल निकालूंगा جسم کے اندر سے کچھ اور بھی نکالوں گا اور ساری رات ان پر سحر کا عمل کروں گا۔ راڈرک نے اسی وقت میرینا کو بلایا۔ تم نے ایک لڑکی کی بات کی تھی، راڈرک نے کہا، تم نے کہا تھا وہ کمسن ہے، اد کھلا پھول ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ 16-17 سال شہنشاہ۔ اسے آج رات اس کاہن کے حوالے کر دینا، راڈرک نے کہا۔ مجھے شہنشاہ نے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے، میرینا نے کہا۔ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، راڈرک نے کہا۔ رات کو لڑکی کو ساتھ لے کر بوسیجن جہاں کہے وہاں پہنچ جانا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اس عورت کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے اچھی طرح سمجھا دو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ میرینا بوڑھے یہودی کے ساتھ چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر کچھ گزر گیا تھا جب میرینا ایک خوبصورت لڑکی کو ساتھ لیے بوڑھے یہودی کے کمرے میں داخل ہوئی، جس وقت راڈرک کے کہنے پر وہ اس بوڑھے کے ساتھ محل میں آئی تھی تو اس نے بوڑھے سے کہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے بہت ہی حسین انعام دیا ہے، یہ لڑکی تو اس نے شہنشاہ کے لیے تحفے کے طور پر منگوائی تھی اور اسے شہنشاہ کے ساتھ جانا تھا۔ کیا تم نے میرے کمرے میں کسی عورت کو آتے جاتے کبھی دیکھا ہے؟ بوڑھے نے کہا تھا۔ میں اس عمر میں نوجوان لڑکی کو کیا کروں گا، یہ لڑکی مجھے کسی اور مقصد کے لیے چاہیے، یہ رات کو بتاؤں گا۔ تم نے صرف یہ احتیاط کرنی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ ہو، اس راز کی قیمت تمہاری جان ہے، تم یقیناً اپنی جان گوانا پسند نہیں کرو گی۔ لڑکی بوڑھے ساحر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ڈر گئی اور میرینا کے ساتھ لگ گئی۔ سامنے میز پر 3 انسانی کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ایک طرف ایک دیوار پر لمبی کھوٹی سے ایک انسانی پنجر لٹکا ہوا تھا۔ اس وقت تو لڑکی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی جب بوڑھے نے لکڑی کے ایک بکس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں سے 2 کالے سانپوں نے سر اوپر اٹھائے اور دونوں نے پھن پھیلا دیے۔ اس یہودی ساحر نے بکس میں کوئی چیز پھینکی اور ڈھکنا بند کر دیا۔ کمرے میں ایسی بدبو تھی جیسے کسی کی لاش گل سڑ رہی ہو۔ یہاں کوئی لاش نہیں تھی، یہ کئی جڑی بوٹیوں اور کیمیائی اشیاء کی بدبو تھی۔ بوڑھا اس کمرے میں مختلف اشیاء جلاتا رہتا تھا۔ کمرے کے ماحول پر ہیبت سی تاری تھی، کئی پوٹلیاں، چھوٹی بڑی ٹوکریاں اور صندوقچیاں بے ترتیبی سے فرش پر پڑی تھیں۔ یہی بوڑھا جو چہرے مہرے، لمبی سفید داڑھی اور صاف ستھری قبا کی بدولت معزز، دانشور اور پروقار لگتا تھا، اس کمرے میں آ کر جیسے اس کا روپ بدل ہی گیا تھا۔ وہ ایک پراسرار اور ڈراؤنی شخصیت بن گیا تھا۔ اس نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرینا سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کمرے میں بٹھا کر واپس آ جائے۔ میرینا لڑکی کو اس کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ صاف ستھرا تھا، ایک دیوار کے ساتھ ایک پلنگ اور پلنگ پر تکیے اور خوبصورت پلنگ پوش تھا۔ فرش پر قالین جیسی دری بچھی ہوئی تھی، چھت سے روشن فانوس لٹک رہا تھا۔ دوسرے کمرے کی بدبو اس کمرے میں بھی تھی۔ کہاں لے آئی ہو مجھے؟ لڑکی نے میرینا سے کہا۔ کیا یہ ہے شہنشاہ راڈرک؟ یہ فوج کا وہ جرنیل بھی نہیں جس کے لیے تم مجھے لائی تھی، وہ تو فوج کے ساتھ آگے چلا گیا ہے۔ راڈرک اپنی 1,00,000 فوج کے ساتھ کوچ کر گیا اور تلے تلا سے بہت دور نکل گیا تھا۔ بادشاہ کے حکم نے وہ سارا کھیل بگاڑ دیا ہے جس میں نے تمہیں استعمال کرنا تھا، میرینا نے کہا۔ میں نے بھی تمہارے ساتھ بادشاہ کے ساتھ جانا تھا لیکن روک لی گئی ہوں۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا اور کہا، میں اس بدبودار کمرے میں اس بوڑھے کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ تم نے میرے باپ کو جو رقم دی تھی وہ واپس لے لینا۔ جلدی آؤ میرینا، بوڑھے یہودی نے ساتھ والے کمرے سے کہا۔ اسے وہیں رہنے دو، گھبراؤ نہیں لڑکی، میرینا نے سرگوشی میں کہا۔ میں تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گی۔ میرینا ساتھ والے کمرے میں بوڑھے کے پاس چلی گئی۔ میں جانتا ہوں تم یہودی ہو، یہودی ساحر نے کہا، اور شاید تم جانتی ہوگی کہ میں بھی یہودی ہوں۔ تم نے میرا ساتھ دینا ہے، شہنشاہ کی فتح کے لیے میں نے ایک ایسا عمل کرنا ہے جس سے تم ڈر جاؤ گی۔ ڈرنا نہیں، کسی یہودی کو اس شہنشاہ کی فتح کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے،
मेरिना ने कहा, इतनी ज्यादा फौज से वह फतह हासिल कर ही लेगा, मेरे काम में दखल न दो। बूढ़े ने उसे डांट कर कहा, शहंशाह के लिए दो शगुन बहुत खतरनाक हैं, इनका असर जायल करना जरूरी है। सुना है हमलावरों की तैदाद 11-12 हजार है। मेरिना ने हंसते हुए कहा, शहंशाह की 1 लाख फौज में 11-12 हजार तो घुड़सवार ही होंगे। फतह हमारे शहंशाह की होगी, आपको मुफ्त में इनाम मिल जाएगा। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जान सकती। बूढ़े ने कहा, मैं जो कहता हूँ वो करो। मैंने इस लड़की के जिस्म से जान निकालनी है, जूं ही ये आखिरी सांस लेगी मैं इसका दिल निकालूंगा, फिर पेट चाक करके अपने अमल के लिए 2 और आजा निकालने में तुम मेरी मदद करोगी। जब काम हो जाएगा तो लड़की की लाश को गायब करना तुम्हारा काम होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं, इस महल से लाशें गायब होती ही रहती हैं। मेरिना पर गशी तारी होने लगी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। उसे ले आओ, बूढ़े ने कहा, प्यार से, धोखे से, उसे कुछ पता न चले। मेरिना दूसरे कमरे में गई और इधर उधर देखने लगी। उसे काम की एक चीज नजर आ गई जो उसने उठा ली और लड़की से कहा कि उसके साथ आए। अब क्या होगा, लड़की ने पूछा, मुझे इस बदबूदार बूढ़े के पास छोड़कर चली जाओगी? मैं कुछ करूंगी, मेरिना ने कहा, डर न जाना, मेरी मदद करना। दोनों बूढ़े साहिर के कमरे में चली गईं। आ बेटी, उसने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, इस मेज पर बैठ जा जरा, मुझे अपना बाप समझ। लड़की ने मेरिना की तरफ देखा, मेरिना ने उसे सर से इशारा किया कि वह मेज पर बैठ जाए। बूढ़ा उसके करीब चला गया, उसने लड़की को कुछ सुंघाकर या हिप्नोटाइज करके खत्म करना था। बूढ़े की पीठ मेरिना की तरफ थी। मेरिना ने दूसरे कमरे से एक मोटा डंडा उठाया जो उसने हाथों में लेकर अपने पीछे किया हुआ था। उसने ये डंडा मजबूती से अपने दाएं हाथ में लिया और पीछे से पूरी ताकत से बूढ़े के सर पर मारा। फौरन बाद ऐसी ही जोरदार एक और ज़र्ब लगाई, बूढ़ा गश खाकर गिरा। मेरिना ने उसे पीठ के बल किया, उसकी छाती पर बैठ गई और उसकी गर्दन दोनों हाथों में लेकर शेरक को दबा लिया। बूढ़ा तड़पा और जल्दी ही बेहिश हो गया। मेरिना ने दूसरे कमरे में लकड़ी का एक बहुत बड़ा बक्स देखा था। लड़की को साथ मिलाकर लाश उठाई और दूसरे कमरे में ले गई। बक्स खोल कर देखा, इसमें जो कुछ पड़ा था वो निकाला और दोनों ने लाश उठाकर पीठ के बल बक्स में रखी और टांगें पीठ पर दोहरी करके बक्स का ढकना बंद कर दिया और इसका बोल्ट चढ़ा दिया। अब इसका राड्रिक बादशाह फतह हासिल करके वापस आएगा, मेरिना ने कहा। चल लड़की, निकल यहाँ से, मुझे डर आता है। लड़की ने कहा, ये सब क्या था? ये न मरता तो तुम मर जाती। मेरिना ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें सुबह यहाँ से निकाल लूंगी, किसी के साथ जिक्र न कर बैठना। दोनों वहां से निकल आईं और मेरिना लड़की को अपने कमरे में ले गई। उसने अपने लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर लिया था। राड्रिक की फतेह का हर किसी को यकीन था, इतनी बड़ी फौज के सामने कोई फौज नहीं ठहर सकती थी। ये ऐसी सूरत थी जो मेरिना को बचा सकती थी। राड्रिक ये समझता कि बूढ़े यहूदी ने उसका बुरा शगुन अच्छा कर दिया था और फिर किसी के हाथों कत्ल हो गया। लेकिन शिकस्त खोर्दगी की सूरत में राड्रिक ने आकर तूफान खड़ा कर देना था। मेरिना ने फरार का इरादा कर लिया। अगले रोज इसने उस लड़की का हुलिया बदला और उसे महल से निकालकर उसके घर भेज दिया और खुद एक और जगह चली गई। ये एक बड़ी हवेली थी जिसमें गोत खानदान रहता था। वहाँ 2 आदमी मौजूद थे। मेरिना ने उन्हें बताया कि वह बूढ़े यहूदी साहिर को कत्ल कर आई है। उसने कत्ल की वजह भी सुनाई और सारा वाक्या सुनाया। ये तो तुमने अच्छा किया है, एक आदमी ने कहा, इस मासूम लड़की को बचा लिया है, अब जो होगा देख लेंगे। हमें ऐसी उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए कि राड्रिक जिंदा वापस नहीं आएगा, मेरिना ने कहा। बर्बरों की तैदाद बहुत थोड़ी है, उस आदमी ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, वो वापस आ रहा होगा तो तुम यहाँ से निकल रही होगी,
تمہیں زندہ اور سلامت سیوستا پہنچانا ہمارا کام ہے، دعا کرو کہ وہ پاس زندہ رہے، ہم تمہیں اس تک پہنچا دیں گے۔
پیشکش رہبر ٹی وی۔